नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी को सोमवार सुबह तीसरी बार जान से मारने की धमकी वाला ईमेल मिला, जिसे भेजने वाले ने 400 करोड़ की फिरौती मांगी। गौरतलब है कि ये वही शख्स है जिसने 27 अक्टूबर को ऐसे दो ईमेल भेजे थे और अंबानी से 200 करोड़ की मांग की थी। पुलिस ने ANI के हवाले से कहा, मुकेश अंबानी को एक ही ईमेल से 3 दिनों में 3 बार जान से मारने की धमकी मिली है। पिछले ईमेल का जवाब न मिलने पर अब भेजने वाले ने अंबानी से 400 करोड़ की मांग की है। मुंबई के गामदेवी PS में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। टाटा मोटर्स ने पश्चिम बंगाल में नैनो प्लांट के मामले में बड़ी जीत हासिल की है। टाटा ग्रुप को पश्चिम बंगाल के औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से 766 करोड़ रुपये का मुआवजा मिलेगा। ये मुआवजा टाटा ग्रुप को सिंगूर में अपने नैनो कार के प्लांट को बंद करने के लिए नुकसान के लिए दिया जाएगा। बता दें कि इस प्लांट को लगाने की अनुमति वामपंथी सरकार के दौरान मिली थी। हालांकि 2008 में भूमि विवाद के कारण 2008 में इस प्लांट को गुजरात के साणद में शिफ्ट कर दिया गया। 2006 में जब पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए। उस दौरान टाटा मोटर्स को हुगली जिले के सिंगूर में नैनो का प्लांट लगाने के लिए 100 एकड़ जमीन दी गई। इस जगह पर टाटा का प्लांट बनना था। इस जमीन से कई किसान जुड़े थे जो यहाँ खेती करते थे। ऐसे में इसका भारी विरोध हुआ। 25 मई 2006 को टाटा के अधिकारी सिंगूर जमीन देखने पहुंचे तो वहां लोगों ने भारी विरोध किया। 17 जुलाई 2006 को पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम ने हुगली के DM को जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया। 3 दिसंबर 2006 को वहां के विपक्षी नेता ममता बनर्जी ने कोलकाता में आमरण अनशन शुरू किया। 3 अक्टूबर 2008 को रतन टाटा ने इस प्लांट को सिंगूर से बाहर ले जाने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि प्याज के निर्यात का न्यूनतम मूल्य तय करने के बाद महाराष्ट्र में प्याज की कीमतें पिछले सप्ताह की तुलना में 5 से 9% तक कम हो गई हैं। केंद्र सरकार ने शनिवार को घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 31 दिसंबर तक प्याज निर्यात पर $800 प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य तय करने का ऐलान किया था। सरकार ने एक बयान में कहा कि प्याज के निर्यात को हतोत्साहित करने और घरेलू बाजारों में इसकी उपलब्धता बनाए रखने के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य तय करने के फैसले ने तत्काल प्रभाव दिखाया है। महाराष्ट्र में प्याज की कीमतों में पिछले सप्ताह के मुकाबले 5% से 9% तक की गिरावट दर्ज की गई। महाराष्ट्र में सभी बाजारों में प्याज की भारी औसत कीमत में 4.5% की गिरावट आई है और खपत केंद्रों में भी इसी तरह की गिरावट देखी गई है। घरेलू बाजारों में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में तेजी रही। हालांकि विदेशी कोषों की सतत निकासी और पश्चिम एशिया में बढ़त तनाव के बीच निवेशकों की भावना प्रभावित हुई, जिससे कारोबार उतार चढ़ाव भरा रहा। विदेशी मुद्रा के कारोबारियों ने बताया कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर लिए फैसले से भी निवेशकों की भावनाएं प्रभावित हुई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष चौहान ने सोमवार को कहा कि 17% भारतीय परिवार शेयरों में निवेश करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने निवेश बैंकरों से बाजार में गुणवत्तापूर्ण कंपनियों को लाने का आग्रह किया। चौहान ने यह एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में कहा कि आम लोग भरोसे के कारण उद्यमियों में निवेश कर रहे हैं और निवेशकों की संख्या बढ़ रही है। चौहान ने कहा कि 5 करोड़ परिवारों के 8 करोड़ निवेशकों ने निवेश किया हुआ है। इसका मतलब है कि देश के कुल परिवारों में से 17% सीधे शेयर बाजारों में निवेश करते हैं। उन्होंने कहा कि बाजार में प्रवेश के लिए कंपनियों के IPO को प्राथमिकता दी जाती है। नकदी की कमी से जूझ रही दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि 4G नेटवर्क का दायरा बढ़ाने और 5G सेवा के लिए कोई भी उल्लेखनीय पूंजीगत व्यय नए वित्त पोषण के बाद ही होगा। कंपनी ने इस तिमाही में इक्विटी निवेशकों से इस बारे में चर्चा पूरी होने की उम्मीद जताई। वोडाफोन आइडिया के दूसरी तिमाही के नतीजों पर आयोजित एक चर्चा में कंपनी के CEO अक्षय मुंदड़ा ने कहा कि 5G सेवाओं की पेशकश की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न नेटवर्क विक्रेताओं के साथ चर्चा की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक केंद्रीय बैंक की पूर्व अनुमति के बगैर अपनी गैर लाभकारी शाखाएं बंद कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें संबंधित राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से मंजूरी लेनी होती है। RBI ने एक परिपत्र में कहा कि गैर लाभकारी शाखाओं को बंद करने का फैसला उचित कारकों को ध्यान में रखकर करना चाहिए और इस संबंध में DCCB के निदेशक मंडल की बैठक का विवरण ठीक से दर्ज किया जाना चाहिए। परिपत्र के मुताबिक बैंक कोई शाखा बंद करने से पहले स्थानीय प्रमुख समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से 2 महीने पहले सभी मौजूदा जमाकर्ताओं या ग्राहकों को सूचित करना चाहिए। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।